एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम गोता लगा रहे हैं जासूसी की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा से थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी अंधेरी सी रही है। फिल्मों में तो खूब देखते हैं, पर असलियत क्या है?
बिल्कुल, और इसी असलियत को थोड़ा समझने के लिए हम आज बात करेंगे क्रिस्टी मक्राकिस की किताब एस्पियनाज, अ कंसाइज हिस्ट्री पर। ये किताब जासूसी के हजारों साल के इतिहास को देखती है, वो भी काफी संक्षेप में।
और ये टॉपिक आज के जमाने में कितना रेलेवेंट है ना?
हाँ।
साइबर जासूसी की खबरें रोज आती हैं, देशों के बीच तनाव, फिर हमारी अपनी प्राइवेसी और वो सरकारी निगरानी वाली बहस।
हाँ बिल्कुल, और ये किताब यही समझने में मदद करती है कि ये सब कोई नई बात नहीं है, इनका एक बहुत लंबा इतिहास है। जासूसी कैसे बदली, टेक्नोलॉजी ने उसे कैसे नया रूप दिया, और आज ही हमारी दुनिया पर कैसे असर डाल रही है, ये सब समझने के लिए ये किताब बढ़िया है।
तो फिर शुरुआत करते हैं लेखिका से, क्रिस्टी मैक्राकिस। कौन है ये और क्यों खास है इस विषय पर लिखने के लिए?
हाँ, तो क्रिस्टी मैक्राकिस जो हैं वो जॉर्जिया टेक में इतिहास की प्रोफेसर हैं।
जी।
और उनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ जासूसी की कहानियों या राजनीति पर ही नहीं रुकती।
अच्छा
जी, वो ज्यादा ध्यान देती हैं विज्ञान और तकनीक पर। मतलब जासूसी असल में की कैसे जाती है, क्या तरीके हैं, क्या उपकरण हैं, ये उनका फोकस रहता है।
हाँ, ये तो दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ कहानियां सुनते हैं, ये नहीं सोचते कि उसके पीछे की तकनीक क्या थी।
बिल्कुल, उनकी पिछली किताबें भी इसी पर हैं, जैसे पूर्वी जर्मनी की जो खुफिया एजेंसी थी स्तासी, उसकी तकनीकी निगरानी पर, या फिर अदृश्य स्याही का इतिहास।
ओ
हाँ, तो इससे पता चलता है कि उनकी पकड़ इस विषय पर कितनी गहरी है। वो आर्काइव्स में रिसर्च करती हैं और फिर मुश्किल चीज़ों को आसान भाषा में समझा देती हैं। ये जो विज्ञान और तकनीक वाला एंगल है, यही उन्हें खास बनाता है। तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब असल में क्या कहती है, इसका निचोड़ क्या है?
देखिए, ये किताब हमें एक लंबे सफर पर ले जाती है, मतलब प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होकर आज के डिजिटल युग तक। और इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि कब क्या हुआ, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे ये जो गुप्त जानकारी हासिल करने की होड़ है, इसने इतिहास को चुपचाप बदला है पर्दे के पीछे से।
हाँ, और किताब का एक बहुत सेंट्रल आइडिया ये है कि जासूसी सिर्फ कुछ एजेंट्स का काम नहीं है, ये दरअसल इंसान की अपनी जो जुगाड़ू प्रवृत्ति है, जो सरलता है और जो तकनीकी विकास है, इन दोनों के साथ साथ चलने की कहानी है।
मतलब जैसे जैसे जानकारी छिपाने के तरीके बने।
बिल्कुल, वैसे वैसे उसे निकालने के, उसे तोड़ने के तरीके भी ईजाद हुए। ये एक अंतहीन दौड़ है, चूहे बिल्ली का खेल कह लीजिए। और ये जो कहते हैं ना कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना पेशा, वो इसी वजह से लगातार बदलता रहा है।
और ये किताब उस छवि को भी तोड़ती है जो फिल्मों ने बनाई है, वो अकेला जासूस, ग्लैमर, एक्शन, वो सब।
हाँ
असलियत, जैसा किताब बताती है, वो ज्यादातर थोड़ी बोरिंग, बहुत सावधानी वाली और टीम वर्क वाली होती है। इसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, भाषा के जानकार और वो लोग जो घंटों बैठकर डेटा को एनालाइज करते हैं, वो शायद फील्ड एजेंट से ज्यादा जरूरी होते हैं।
सही कहा। किताब ये भी साफ करती है कि जासूसी के जो बुनियादी लक्ष्य हैं, दुश्मन की जानकारी लेना, अपने राज छुपाना, घटनाओं को प्रभावित करना, वो हजारों सालों से कमोबेश वही हैं।
लेकिन तरीके,
हाँ, तरीके बिल्कुल बदल गए हैं, तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। कहाँ वो पुराने जमाने के कोड और कबूतरों से भेजे संदेश, और कहाँ आज के सैटेलाइट, ड्रोन और साइबर हथियार।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब शुरू कहाँ से करती है?
प्राचीन जड़ें, कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ग्रीस, मतलब जब से राज्य बने हैं उन्हें अपने दुश्मनों की खबर रखने की जरूरत पड़ी है।
हाँ, चीन के वो सुनतुजू।
बिल्कुल, सुनतुजू की आर्ट ऑफ वॉर में तो बाकायदा जासूसों के प्रकार, धोखे का इस्तेमाल, पहले से जानकारी होने का महत्व, इन सब पर कितना जोर दिया गया है और वो आज भी कितना सच लगता है। फिर रोमन साम्राज्य के स्पेक्युलेटर्स थे, उनका काम ही था खुफिया जानकारी लाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब इंसानों के जरिए जासूसी, वो कितनी पुरानी है।
आधुनिक इंटेलिजेंस सेवा का जन्म, फिर हम आगे आते हैं पुनर्जागरण और उसके बाद के समय में। यहाँ जासूसी थोड़ी व्यवस्थित होने लगती है, राज्यों का एक औपचारिक हथियार बनती है।
हाँ,
इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो जासूस चीफ थे, सर फ्रांसिस वॉल्सिंगम, वो एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने पूरे यूरोप में जासूसों का नेटवर्क बनाया, कोड तोड़े, जैसे वो बैबिंगटन प्लॉट वाला कोड था जिससे रानी मैरी के खिलाफ साजिश का पता चला, और वो दुष्प्रचार का भी इस्तेमाल करते थे।
यहीं से मतलब जासूसी थोड़ी इंस्टीट्यूशनल होने लगी और कोड तोड़ने का महत्व, जिसे हम सिग्नल इंटेलिजेंस या सिगेंट कहते हैं, वो भी यहीं से दिखने लगता है। क्रांति और साम्राज्यों का युग। फिर आया 18वीं और 19वीं सदी का दौर। क्रांतियां हुई, बड़े बड़े साम्राज्य बने, टकराए, तो जासूसी भी उसी हिसाब से बदली।
जैसे?
जैसे अमेरिकी क्रांति में जॉर्ज वॉशिंगटन का कल्प रिंग था, जासूसों का नेटवर्क, या नेपोलियन के फ्रांस में पुलिस और खुफिया तंत्र को सेंट्रलाइज किया गया। और वो जो ग्रेट गेम चला था मध्य एशिया में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच, वो तो पूरी तरह जासूसी और प्रभाव की लड़ाई थी। इन सबसे ये जरूरत महसूस हुई कि स्थायी खुफिया एजेंसियां होनी चाहिए।
कि पहले विश्व युद्ध ने जासूसी का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया।
इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब
ये कि नई तकनीकें आईं, जैसे रेडियो, टेलीग्राफ, इनसे बड़े पैमाने पर सिग्नल इंटेलिजेंस यानी SIGNT मुमकिन हो गया।
अच्छा,
इसका सबसे फेमस उदाहरण है ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स का जिमरमैन टेलीग्राम को पढ़ लेना, रूम 40 वाले। उसी से तो अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था।
और इसी दौर में प्रोपेगेंडा एक हथियार बना, माताहारी जैसी जासूसों की कहानियां मशहूर हुई और MI5, MI6 जैसी फॉर्मल एजेंसियां बनी। यहाँ से तकनीक ने वाकई खेल बदलना शुरू कर दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध इंटेलिजेंस युद्ध का शिखर। फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध। यहाँ जासूसी अपने पीक पर पहुंचती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो ब्लचलेबाग का है।
हाँ, वो एनिग्मा कोड तोड़ने वाली कहानी।
बिल्कुल, वो दिखाता है कि कैसे टॉप क्लास के तकनीकी दिमाग जैसे एलन ट्यूरिंग और हजारों एनालिस्ट्स की मेहनत ने मिलकर युद्ध का नतीजा बदल दिया, वो अल्ट्रा इंटेलिजेंस।
और वो धोखे वाले ऑपरेशंस भी तो थे डी-डे से पहले, ऑपरेशन मिंसमीट जैसा।
हाँ हाँ, वो भी कमाल थे। और अमेरिका ने OSS बनाई, जो बाद में जाके CIA बनी। तो यहां आप देखते हैं कि कैसे ह्यूमन यानी इंसानी जासूसी और टेकेंट यानी तकनीकी जासूसी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी।
शीत युद्ध जासूसी का स्वर्ण युग। फिर आया कोल्ड वॉर। कई लोग इसे जासूसी का गोल्डन एज कहते हैं। दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, CIA बनाम KGB।
और इनके बीच जो खुफिया लड़ाई चली वो तो गजब थी। एक तरफ तो विचारधारा या पैसे के लिए पाला बदलने वाले जासूस थे, जैसे वो कैम्ब्रिज 5 या एल्ड्रिच एम्स।
हाँ, डबल एजेंट्स।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ तकनीक का बोलबाला था। U-2 जैसे जासूसी विमान, सैटेलाइट से तस्वीरें लेना जिसे IMINT कहते हैं, दूतावासों में सुनने वाले छोटे छोटे यंत्र।
और स्टासी का जिक्र भी जरूरी है यहाँ।
पूर्वी जर्मनी की एजेंसी।
हाँ, स्टासी एक केस स्टडी है। वो दिखाती है कि कैसे हाईटेक निगरानी और लाखों आम लोगों का मुखबिर नेटवर्क मिलकर एक पूरे समाज को कंट्रोल कर सकता है।
बिल्कुल,
बहुत डरावना है वो।
डिजिटल फ्रंटियर शीत युद्ध के बाद। फिर बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत संघ खत्म हुआ और इंटरनेट आ गया। इसने पूरी खुफिया दुनिया को फिर से बदल डाला।
कैसे?
अब खतरा सिर्फ दुश्मन देशों से नहीं रहा। आतंकवादी गुट, साइबर क्रिमिनल, आर्थिक जासूसी करने वाली कंपनियां, ये सब मैदान में आ गए। साइबर जासूसी तो रोज की बात हो गई है।
और जानकारियों का अंबार लग गया है।
हाँ, इंटरनेट और सोशल मीडिया से इतनी खुली जानकारी OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मिलती है कि उसे प्रोसेस करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। और फिर एडवर्ड स्नोडन ने जो खुलासा किया बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी का।
हाँ, उसने तो नैतिकता और कानून पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए।
बिल्कुल।
अब सवाल ये उठता है कि क्या तकनीक इंसान पर हावी हो गई है? वाह, क्या सफर है ये हजारों सालों का। तो इस पूरी कहानी से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जो बार बार सामने आती हैं?
देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो मैं क्राकिस कहती हैं वो है HINT और टेकेंट का अटूट रिश्ता, मतलब इंसान और तकनीक का साथ।
अच्छा।
वो बार बार ये साबित करती हैं कि जासूसी सबसे अच्छी तभी होती है जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आज भी इतनी एडवांस सैटेलाइट और कंप्यूटर के बावजूद एक भरोसेमंद सोर्स से मिली खबर या एक अनुभवी एनालिस्ट की समझ वो गेम चेंजर हो सकती है। तकनीक जरूरी है पर वो इंसान की जगह नहीं ले सकती।
हाँ, ये बात तो सही है। और दूसरी बात?
दूसरी बात है जासूसी और काउंटर इंटेलिजेंस की वो कभी ना खत्म होने वाली रेस, वो चूहे बिल्ली वाला खेल।
अच्छा, जैसे कोड बनाना और कोड तोड़ना।
बिल्कुल, जैसे ही कोई जानकारी छिपाने का नया तरीका आता है, उसे खोलने का तरीका भी खोज लिया जाता है। निगरानी की तकनीक आती है तो उससे बचने के उपाय भी आ जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली होड़ है। आज जो सीक्रेट है कल शायद ना रहे। कोई भी बढ़त हमेशा के लिए नहीं होती।
तीसरा पॉइंट क्या है?
तीसरा, इतिहास को बनाने में जासूसी की भूमिका, जो अक्सर छिपी रह जाती है। हम बड़ी लड़ाइयों और संधियों के बारे में पढ़ते हैं, पर कई बार उनके पीछे खुफिया एजेंसियों की सफलता या नाकामी का बड़ा हाथ होता है।
जैसे वो ज़िमरमैन टेलीग्राम वाली बात।
हाँ, या पर्ल हार्बर से पहले इंटेलिजेंस फेलियर, या दूसरे विश्व युद्ध में अल्ट्रा इंटेलिजेंस का योगदान, या क्यूबा मिसाइल संकट का टलना, ये सब खुफिया जानकारी पर आधारित था। तो इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए जासूसी को समझना जरूरी है।
और एक चौथा मुद्दा जो बहुत अहम है वो है नैतिकता का सवाल, है ना?
जी हाँ, जासूसी में धोखा है, झूठ है, दूसरों की प्राइवेसी में दखल है। किताब इस मुश्किल सवाल से कतराती नहीं है, खासकर जब स्टासी या आज की मास सर्वेलांस की बात होती है।
कि क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना जायज है, खासकर एक लोकतंत्र में?
बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। सुरक्षा जरूरी है, पर नागरिकों की आज़ादी की कीमत पर यह संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। किताब में कुछ ऐसे विचार भी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जो दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ, जैसे एक बात जो मुझे बहुत सटीक लगी, हर तकनीकी क्रांति ने खुफिया क्षमताओं का विस्तार किया है, लेकिन साथ ही नई कमजोरियां भी पैदा की हैं।
सही है, ये तकनीक का डबल एज्ड स्वॉर्ड वाला पहलू है। हर नई खोज नए मौके लाती है, पर नए खतरे भी। इंटरनेट ने जानकारी आसान की तो साइबर हमले भी आसान कर दिए।
एक और अहम विचार, सबसे बेहतरीन तकनीकी खुफिया जानकारी भी बेकार है अगर उसे समझने और उसके मायने निकालने वाले कुशल मानव विश्लेषक न हो।
ये फिर वही बात आ गई, तकनीक अपनी जगह है, पर आखिर में तो इंसानी दिमाग ही उस डेटा को मतलब देता है। बिना एनालिसिस के डेटा सिर्फ शोर है।
और ये भी कितना सच है आज के संदर्भ में, खुफिया सेवाओं को हमेशा इस तनाव से जूझना पड़ता है कि वो समाज की रक्षा करें और साथ ही उन खुले मूल्यों को भी बचाएं जो उस समाज को बचाने लायक बनाते हैं।
बिल्कुल, ये सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच का वो क्लासिक टेंशन है, हर लोकतांत्रिक देश इससे जूझता है। तो सवाल यह है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं?
हाँ, मुझे लगता है कई चीजें हैं। सबसे पहले तो अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर, जैसे इतिहास में कोड्स और सीक्रेट्स थे, वैसे आज हमारे पासवर्ड हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं।
अच्छा पॉइंट है।
तो मजबूत पासवर्ड रखना, इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन सावधान रहना, ये सबक हमें इतिहास से ही मिलता है कि सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो कभी भी भेदी जा सकती है।
और दूसरा है मीडिया लिटरेसी, मतलब मीडिया को समझना। इतिहास बताता है कि कैसे प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी का इस्तेमाल होता आया है।
हाँ।
तो आज जब हम कोई खबर पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं, तो हम थोड़ा रुककर सोच सकते हैं, ये जानकारी कहाँ से आ रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है, क्या ये सच है?
और तीसरा मुझे लगता है एक जागरूक नागरिक बनना। जब सरकार की निगरानी, हमारी प्राइवेसी या इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारों पर बहस होती है,
हाँ,
तो इस इतिहास की समझ हमें अपनी राय बनाने में मदद करती है कि कितना नियंत्रण सही है, कितनी आज़ादी ज़रूरी है, इस संतुलन पर सोचना।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा?
मेरे लिए तो सबसे दिलचस्प ये था कि कैसे हजारों साल पुराने सिद्धांत आज भी साइबर जासूसी में दिखते हैं, और कैसे तकनीक ने सब कुछ बदल दिया, पर वो इंसान वाले पहलू, भरोसा, धोखा, विश्लेषण, वो आज भी उतने ही अहम हैं।
मेरे लिए शायद सबसे अहम बात वो ह्यूमेंट और टेकेंट के बीच का नाजुक संतुलन है, और दूसरा वो सुरक्षा बनाम आज़ादी वाली जो कश्मकश है, ये दिखाता है कि इस दुनिया में कोई आसान जवाब नहीं है।
हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, ये एक लगातार चलने वाला विचार विमर्श है।
बिल्कुल, शायद किताब का सार यही है कि जासूसी इंसान की ज़रूरत और उसकी दिमागी उपज का नतीजा है। तकनीक ने इसे बदला ज़रूर है, पर ये आज भी मानवीय समझ, नैतिकता और भरोसे जैसे मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई है।
और इसके इतिहास को समझना सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये हमें आज की जटिल दुनिया को हमारी डिजिटल लाइफ, हमारे अधिकार और ये जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है, इसे बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।